डोंट वरी, मैं छोड़ दूंगा, अरमान ने कहा। कोई बात नहीं, तुम नाश्ता करो, रिहान ने ठंडी आवाज में कहा। सादिया चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब कुछ एंजॉय कर रही थी। रिहान गुस्से भरी नजरों से नूर की तरफ देख रहा था, जबकि नूर चुपचाप वहां से जाने लगी। मैं तो वैसे भी जा ही रहा था, इसलिए कहा, अरमान ने धीरे से कहा। असल में वो सचमुच नूर को छोड़ना चाहता था। अरमान ने एक उम्मीद भरी नजर से रिहान की तरफ देखा, शायद वो कह दे कि वो नूर को छोड़ सकता है, लेकिन रिहान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। नूर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई, तभी सादिया की आवाज आई, नूर तुम्हारा टिफिन। नूर सच में अपना टिफिन टेबल पर ही भूल गई थी। सादिया ने टेबल से टिफिन उठाया और जल्दी से उसके पीछे जाने लगी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि अब जो होने वाला है उससे नूर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। रिहान, तुम नाश्ता करके मेरे कमरे में आना, ये कहकर रिहाना बेगम ने अरमान के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और वहां से चली गई। अब हॉल में सिर्फ अरमान और रिहान रह गए थे, लेकिन जैसे ही रिहाना बेगम गई, अरमान भी बिना कुछ कहे उठकर चला गया। रिहान वहीं बैठा रह गया, उसने अभी तक नाश्ता शुरू भी नहीं किया था। अपने हाथ में पकड़ा हुआ सैंडविच उसने वापस प्लेट में रख दिया, फिर उसने आंखें बंद कर ली, जैसे बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में कर रहा हो। असल में कुछ देर पहले जो मैसेज रिहान को आया था वो किसी और का नहीं था। रिहान ने रात को ही अपने एक आदमी को कहा था कि एक गाड़ी की लोकेशन पता करे, उस गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था। कुछ ही देर पहले उस आदमी ने मैसेज भेजकर लोकेशन बता दी थी। गाड़ी पूरी रात माहिरा के गेस्ट हाउस पर खड़ी रही थी, रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। सभी के जाने के बाद रिहान ने उसी आदमी को फोन भी किया। क्या ये बात कन्फर्म है? रिहान ने सख्त आवाज में पूछा। जी सर, बिल्कुल कन्फर्म है, उधर से जवाब आया। गाड़ी पूरी रात वहीं खड़ी रही थी। फोन कटते ही रिहान की मुट्ठियां भींज गईं। उसे ये नहीं पता था कि गाड़ी फैजान लेकर गया था और वो पूरी रात अपने माँ बाप के पुराने घर में रहा था। लेकिन रिहान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो यही सोच रहा था कि अरमान और नूर पूरी रात वहां साथ थे। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी, उसकी आंखों में जलन थी, चेहरा सख्त हो गया था और दिल में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या सच में नूर एक कैरेक्टरलेस लड़की है? सादिया टिफिन लेकर नूर के पीछे बाहर आई थी। नूर अपनी छोटी सी गाड़ी में जाकर बैठ गई। उधर फैजान अभी गाड़ी में नहीं बैठा था, वो बाहर ही खड़ा था। सादिया धीरे धीरे उसके पास आई ताकि नूर उनकी बातें ना सुन सके। कब तक लोगों को ऐसे ही छोड़ते रहोगे? सादिया ने धीमी लेकिन ताने भरी आवाज में कहा। असल में उसे फैजान का नूर को इस तरह छोड़ने जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। दूसरों के नौकर बने हुए हो तुम, वो गुस्से में बोली। रिहान का प्रपोजल स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? कम से कम नौकरी तो करोगे, कुछ इज्जत तो होगी। फिर ताना मारते हुए बोली, यहां ड्राइवर बनकर खुश हो, लड़कियों को छोड़ते फिरते हो। सादिया की आवाज में साफ गुस्सा था, लेकिन फैजान ने उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो शांत आवाज में बोला, मैं नूर को छोड़ने के बाद सब्जी मार्केट जाऊंगा, अगर कुछ मंगवाना हो तो बता देना। इतना कहकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उधर गाड़ी में बैठी नूर दोनों भाई बहन को देख रही थी। उसे उनकी बातें सुनाई तो नहीं दी थी, लेकिन माहौल देखकर वो समझ गई थी कि कुछ ठीक नहीं है। वैसे भी वो सुनती आई थी, फैजान किसी काम का नहीं है, सब यही कहते थे। कोई नहीं जानता था कि फैजान पढ़ रहा है और कुछ बनने की तैयारी कर रहा था। कुछ ही देर बाद गाड़ी स्टार्ट हुई, नूर और फैजान वहां से निकल गए और सादिया वापस घर के अंदर चली आई। क्या हुआ? सादिया जो अभी अभी अंदर आई थी, उसने रिहान का चेहरा देखकर पूछा। उसका चेहरा गुस्से और तनाव से भरा हुआ था। ऑफिस की कॉल थी, इतना कहकर रिहान बिना रुके वहां से चला गया। सादिया कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। उसे साफ साफ सुनाई तो नहीं दी थी, लेकिन उसने इतना जरूर सुन लिया था कि किसी लोकेशन ट्रेस करने की बात हो रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर रिहान किसकी लोकेशन पता कर रहा है। उधर दूसरी तरफ गाड़ी सड़क पर चल रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद नूर ने धीरे से पूछा, आपको बुरा नहीं लगता? फैजान ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। क्या? जो अभी सादिया ने आपको कहा? नूर बोली। उसे ठीक ठीक सुनाई तो नहीं दिया था, लेकिन इतना वो समझ गई थी कि सादिया ने कुछ अच्छा नहीं कहा। फैजान हल्का सा मुस्कुराया, उस मुस्कान में दर्द साफ छलक रहा था। हमेशा से ही सुनता आया हूं, वो बोला, इसमें नया क्या है? नूर को यह सुनकर सचमुच बुरा लगा। देखिए, सब लोग आपको इतना कुछ बोलते हैं कि आप काम नहीं करते, बेकार हैं, निकम्मे हैं। फिर उसने सीधे कहा, लेकिन आप तो पढ़ रहे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं, तो आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप क्या बनना चाहते हैं? अपना इंटेंशन बता दीजिए, सब चुप हो जाएंगे, फैजान ने सड़क पर नजर रखते हुए कहा। किसी को अपना इंटेंशन बताने से क्या फायदा, वक्त खुद बता देगा कि मैं क्या हूं। और क्या करूंगा। नूर ने तुरंत कहा, ये वक्त वाला लॉजिक मुझे कभी समझ नहीं आता। फैजान हल्का सा हंस पड़ा, आपको तो वैसे भी सही बात समझ नहीं आती। नूर तुरंत बहस के मूड में आ गई, अच्छा तो आप मुझे एक भी उदाहरण दीजिए जहां किसी ने सबको कुछ बताए बिना और सिर्फ वक्त ने उसका जवाब दिया हो। वैसे भी नूर बहस से पीछे हटने वालों में से नहीं थी और फैजान के साथ तो वो खास तौर पर बहुत कंफर्टेबल महसूस करती थी। फैजान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दिखा देता लेकिन अभी आप क्लास के लिए लेट हो रही हैं। नूर ने तुरंत सिर हिलाया, मैं बिल्कुल लेट नहीं हो रही। फिर जिद भरे अंदाज में बोली, दिखाइए, आज तो मैं देखूंगी कि आप वक्त का कौन सा उदाहरण देने वाले हैं। फैजान उसकी जिद देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। असल में वो लड़की उसके लिए क्या थी ये वो खुद भी ठीक से नहीं जानता था, लेकिन एक बात जरूर थी, उसकी बातों पर उसे कभी गुस्सा नहीं आता था क्योंकि नूर बिना किसी वजह, बिना किसी रिश्ते के उसकी फिक्र करती थी। रेहान तो बात करता हुआ अपने कमरे में चला गया था। रेहाना बेगम अरमान के पीछे लॉन में आ गई थी। उसे अरमान फिकाम था। असल में वो बहुत से गिफ्ट मंगवाने वाली थी जो रेहान शादी में लेकर जाने वाला था। ज्वेलर्स की शॉप पर फोन कर दूंगी, तुम बस गिफ्ट लेकर आ जाना, रेहाना बेगम ने अरमान से कहा। लेकिन अरमान का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वो कुछ जवाब देने ही वाला था कि रेहाना बेगम फिर बोली, मैं रेहान से खुद बात कर लूंगी, उसे समझा दूंगी। रेहाना बेगम जानती थी कि अरमान इस वक्त परेशान है क्योंकि रेहान सख्ती कर रहा था। उसी वक्त रेहान अंदर से बाहर आ गया। दोनों लॉन में खड़े हुए थे। रेहान ने उनकी बात का आखिरी हिस्सा सुन लिया था। ऐसी क्या बुराई है मुझमें जिसे ठीक करना है, उसने ठंडी लेकिन तीखी आवाज में पूछा। रेहाना बेगम पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। उधर अरमान चुप ही खड़ा रहा। रेहाना बेगम ने इशारे से अरमान को उसके घर जाने को कहा। अरमान बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अब माँ बेटा अकेले रह गए थे। रेहान के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। अरमान ने मेरी शिकायत की है आपसे, उसने सीधा सवाल किया। क्या कहा उसने, रेहाना बेगम ने गहरी सांस ली। क्या हो गया है तुम्हें रेहान, उन्होंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। तुम किसी को बात करने का मौका क्यों दे रहे हो, तुम तो ऐसे नहीं थे। उनकी बात सच भी थी, रेहान ऐसा नहीं था। माँ बेटे दोनों को लोगों को डील करना आता था। वे गुस्से से नहीं बल्कि बातों से सामने वाले से अपनी बात मनवाते थे। रेहान कभी अपना टेम्पर लूज नहीं करता था, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग लग रहा था। क्या हो गया है तुम्हें, रेहाना बेगम ने फिर पूछा। फिर उन्होंने सीधे कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम नूर पर बिगड़ रहे थे, अगर तुम उससे ऐसे रूड होकर बात करोगे, उन्होंने सख्ती से कहा, तो कौन उसकी इज्जत करेगा।
रेहान चुप खड़ा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही थी।